नमस्कार,
मेरा आज का विषय है कहानी कैसे लिखें। हम बहुत से लेखकों को पढ़ते हैं, बड़े बड़े उपन्यास, बड़े बड़े कहानीकार, उनकी बड़ी बड़ी कहानियां हम देखकर हैरान होते हैं कि इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी कहानियां, बड़ी बड़ी कहानियां कैसे लिख ली। हम कोशिश करने के बावजूद भी ऐसी कहानी नहीं लिख पाते जो बड़ी अच्छी हो और जिसको हर ओर से प्रशंसा मिले। तो कहानी के बारे में आज हम बात करेंगे। कहानी लिखते हुए इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कहानी हम लिख रहे हैं वो कहानी पूरे होते होते अपना ऐसा प्रभाव पाठक पर छोड़े कि पाठक दंग रह जाए। तो ये बात तभी आती है जब हम कहानी लिखने का अभ्यास करते हैं। लेकिन अभ्यास के साथ साथ कुछ ऐसे बिंदु भी हैं, अगर हम उन पर विचार करें तो हम बड़ी अच्छी कहानी लिख सकते हैं, एक अच्छे कहानीकार बन सकते हैं। कहानी चाहे किसी भी भाषा में हो, चाहे वो हिंदी में हो, पंजाबी में हो, अंग्रेजी में हो, बंगला में हो, तमिल में हो, कन्नड़ में हो, मलयालम में हो, असमिया में हो, या बंगला में हो, किसी भी भाषा में हो, तो कहानी टिकी होती है भावों पे। अगर भावों पे, पात्रों पे, शैली पे, भाव का संबंध होता है मनुष्य से, मनुष्य कहलाता है समाज में, तो समाज का चित्रण करते हुए मनुष्य के भावों को जो चीज बड़ी कुशलता के साथ जब हम अपनी बात कह देते हैं किसी माध्यम में, तो वो एक बड़ी अच्छी कहानी का जन्म होता है। कहानी जिस तरह हम स्कूल पढ़ते हैं, बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, तो बच्चों को स्कूल में जब हम कोई काम देते हैं, कोई निबंध लिखने को दे दिया, तो निबंध में हम बच्चों को किसी विषय पर निबंध दे दिया हमने, मान तो बच्चे निबंध में क्या करते हैं, बच्चे निबंध पे पहले लिखेंगे उसकी भूमिका, भूमिका मीन जो उसका परिचय, उसके बाद लिखेंगे विषय वस्तु, इसके बाद लिखेंगे उपसंहार या जिसे हम कहते हैं कि निष्कर्ष। तो कहानी भी वैसा ही है। कहानी जब हम लिखना शुरू करते हैं, जब लेखक कहानी के बारे में सोचता है, तो पहले इसके परिचय के बारे में सोचता है कि कहानी कैसी होनी चाहिए, कहानी का जो परिचय है, जो कहानी में जो क्या होना चाहिए। दूसरी बात, कहानी का कंटेंट, कहानी का विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए। और तीसरी बात, कहानी का निष्कर्ष, कहानी का निष्कर्ष ऐसा होना चाहिए जो पाठक को दंग कर दे, पाठक उसको पढ़ते ही, खत्म करते ही हैरान हो जाए, भौचक रह जाए कि इतनी अच्छी कहानी उसको पढ़ने को मिली है, चमत्कार हो जाए, जिसे हम कहते हैं चमत्कार हो जाए, तो वो कहानी एक सफल कहानी मानी जाती है। कहानी में कथानक का विशेष महत्व होता है। जब जैसे आपको बताया अभी, कथानक बनता है विषय वस्तु से, विषय वस्तु ही कथानक होता है, समझ लो, ये बात कहनी चाहिए हमें। हर लेखक जब कहानी लिखता है तो उसकी पहली शर्त यह होती है, उसके मन में पहला विचार यह आता है कि पाठक उसकी कहानी को पसंद करें, कहानी को पढ़ें, कहानी उन्हें अच्छी लगे और वो कहानी की तारीफ करें, कहानी पे अच्छे कमेंट लिखना दें और लेखक को सरकार की ओर से या कहीं से भी उसे इंसेंटिव मिले, ये उसकी इच्छा होती है, तभी वो कहानी लिखता है। तो आज हम कहानी की बात करेंगे। हम पांच कहानी के बिंदु होते हैं, जो मुख्य बिंदु होते हैं। अगर आपने उन पांच बिंदुओं पर गौर से विचार कर लिया तो आप समझो एक अच्छे कहानीकार बन गए। वो कहानी चाहे आप किसी भी भाषा में लिखें, पंजाबी में लिखें, हिंदी में लिखें, अंग्रेजी में लिखें, बंगला में लिखें, किसी भी भाषा में लिखें, आपने उन अगर पांच बिंदुओं पर विचार कर लिया तो आप एक अच्छे कहानीकार बन गए। पहली बात क्या है, पहला बिंदु क्या है, पहला बिंदु है कि कहानी की विषय वस्तु। ये आपके मन में स्पष्ट होना चाहिए कि कहां की कहानी की जो विषय वस्तु है वो बिल्कुल स्पष्ट हो, अस्पष्ट बिल्कुल ना। क्या भाव है इसका? कहने का भाव ये है इसका कि अगर आपकी कहानी की विषय वस्तु बिल्कुल स्पष्ट है, आपको पता है कि आपने कहानी में क्या कहना है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप किस विषय को लेकर कहानी कहना चाहते हैं, अगर आपके दिमाग में क्लियर है उस बात को, आपको पता है आपको कि कहानी दहेज पे है, कहानी नशे के ऊपर है, कहानी किसी और विषय पे है, क्राइम पे है, किसी पे भी है, तो अगर आपके मन में वो सही तस्वीर बनी हुई है तो आप एक अच्छी कहानी लिख पाएंगे। पहली बात, विषय वस्तु आपके मन में बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन विषय वस्तु स्पष्ट होने के साथ साथ आपको यह भी करना है कि कहानी में आपने उपदेशक नहीं बनना है, आपने उसको शिक्षण देनी किसी पाठकों को अपने भी, जैसे हम कहते हैं कि कोई भी, चलो बात कहते हैं हम, जैसे बच्चों को समझाते हैं कि ब्रश मत करो, ये मत करो, झूठ मत बोलो, ये बासी बातें नहीं करनी है। तो कहानी ऐसी होनी चाहिए जिससे पाठक अपने आप शिक्षा ग्रहण करे। कहानी के संवाद, कहानी का, कहानी के विषय वस्तु, कहानी का उसकी आगे, कहानी की लय, कहानी की शैली, ये सारी चीजें बताएं पाठक को कि उसे कुछ हासिल हो गया है, उसे सीख मिल गई है। कहानी की सीख लेखक कभी नहीं देता, कहानी अपने आप में ही सीख देती है। कहानी पढ़ने के बाद पाठक इस बात का चिंतन करे, इस बात को सोचे, इस बात का विचार करे कि उसे क्या सीखने को मिला है, उसने क्या सीखा है। आपने उसको कोई सुझाव नहीं देना, उसको कोई सजेशन नहीं देना कि अब ये करो वो करो। कहानी जो यथार्थ है उसको वहीं छोड़ देना है और उसके बाद पाठक को अपने आप को तय करना है कि उसने क्या सीखा है और उसका इस कहानी को लेकर भविष्य में क्या नजरिया है और उसने इस जो कहानी ने निष्कर्ष दिया है उस पर उसने आगे क्या करना है, उसकी आगे उस पर क्या सोच है, उसका क्या थॉट है उसके ऊपर। ये अपने आप ही पाठक को तय करने देना है, तभी वो एक अच्छा, तभी जो कहानी है एक अच्छी कहानी समझ जाएगी। दूसरा पॉइंट है, आपने पात्रों को बड़ा ही विश्वसनीय बनाना है। पात्र तो काल्पनिक होते हैं कहानी में, लेकिन काल्पनिक होते हुए भी पात्र ऐसे नजर आने चाहिए कि जैसे लगे कि हमारे अपने आसपास के समाज के हैं। जैसे लगे कि अश्विनी आहूजा है, ऐसे लगे कि सुनीता रानी है, ऐसे लगे कि बुधिया है, जैसे लगे राकेश कुमार है, राकेश कुमार वही जो हमारे मोहल्ले में पोस्टमैन का काम करता है, वही लगे। मतलब तो कहने का भाव ये है कि पात्र ऐसे होने चाहिए जो काल्पनिक होते हुए भी विश्वसनीय लगे, हम उन पर विश्वास कर सके, हमें लगे कि हमारे आसपास के वातावरण के, हमारे परिवेश के हैं और वो हमारे हमारे बीच में से ही आए हुए हैं, कहीं किसी और संसार से नहीं आ गए, एलियन से नहीं आ गए, हमारे अपने ही मोहल्ले के, हमारे परिवेश के, हमारे अपने समाज के ही वो लोग हैं, वही हमारे पात्र हैं। तो पात्रों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए लेखक को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसे पात्रों के जीवन में घुसना पड़ता है, पात्रों को समझना पड़ता है, चरित्र को समझना पड़ता है कि कौन सा व्यक्ति किस स्वभाव का है, किस तरह की उसकी आदतें हैं, किस तरह वो रिएक्ट करता है किसी दूसरी बात को लेके, किस तरह का उसका बोलचाल का तरीका है, किस तरह का उसका टेम्परामेंट है। ये सारी बातें जो है वो पात्र को समझना ही लेखक की सबसे बड़ी मेहनत होती है। अगर वो लेखक उसमें मेहनत कर ले, पात्रों को विश्वसनीयता बनाए रखने में मेहनत कर ले, तो वो एक अच्छा लेखक बन जाता है और जो कहानी पैदा होती है उन पात्रों के माध्यम से, वो बड़ी ही एक विचित्र कहानी, बड़ी ही एक वंडरफुल स्टोरी जिसे हम कहते हैं, वो बन जाती है। तीसरा पॉइंट है, पीओवी, पीओवी मींस यानी पॉइंट ऑफ व्यू। पीओवी फिल्म की टर्म है, शॉट का नाम होता है पीओवी। तो उसमें फिल्म में तो यह होता है कि एक चरित्र जो है वो उसका दृष्टिकोण क्या है उनके उसके आसपास की चीजों के बारे में, उसके आसपास के परिवेश के बारे में उसका नजरिया क्या है। लेकिन कहानी में पीओवी में लेखक का नजरिया होता है, लेखक अपने पात्रों के बारे में क्या सोचता है, पात्रों को वो किस तरह से उनको उनकी एक्सप्लेन करता है, पात्रों को उनका वर्णन करता है, तो पात्र उसके कैसे हैं उसके बारे में वो लिखता है। ये सारी बातें पीओवी के अंतर्गत आती हैं। पीओवी करते हुए हम कई बार ऐसा होता है कि लेखक ऐसा करते हैं कि वो अपने मुख्य पात्र को भूल जाते हैं और गौण उनका ध्यान जो है गौण पात्रों पर केंद्रित हो जाता है। तो ये कहानी की सबसे बड़ी कमी समझी जाती है। अगर आपका ध्यान अपने मुख्य पात्र से हटकर, एक प्रोटैगनिस्ट से हटकर गौण पात्रों पर आ गया, तो समझो आपकी कहानी वहीं पे मर गई, खत्म हो गई। पीओवी बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है कहानी में, फिल्म में भी होता है, कहानी में भी होता है। तो मेन पात्र पर अपना ध्यान केंद्रित करना, गौण पात्रों को इतना ध्यान ना देना ही पीओवी कहलाता है। और पीओवी जो है, अगर आपको इसकी समझ आ गई तो आप समझो एक अच्छे कहानीकार बन सकते हैं। पीओवी एक एग्जांपल और बताऊंगा आपको, मैं बताना चाहूंगा कि जिससे हम कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पात्रों के माध्यम से स्थिति को उलझा देते हैं। कई बार हमारा ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हमारा कोई हमारा कोई अयुष्य भाव होता है। मान लो मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ ठगी की है। अगर मैं उस दोस्त के बारे में अपने एक चरित्र के रूप में उस कहानी में लिखना चाहूं तो उसको ज्यादा फोकस कर दूं और मेन पात्र को भूल जाऊं अपनी ईर्ष्या भाव को दिखाने के लिए, अपने मन के भाव को, अपने मन को संतुष्ट करने के लिए कि मैंने उसके बारे में लिख दिया, तो वो आपका मन तो संतुष्ट हो जाएगा, आपके दिल को तो सुकून मिल जाएगा कुछ समय के लिए, लेकिन कहानी आपका जो लेखक है वो मर जाएगा, आपका जो कहानीकार है वो निकम्मा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस कारण कभी भी हमेशा अपने गुण पत्रों पर उतना ही ध्यान दीजिए जितना वो डिजर्व करते हैं, इतनी उनको ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादा ध्यान, पूरा ध्यान अपने मुख्य पात्र पर ही दीजिए, प्रोटैगनिस्ट पर ही दीजिए, तभी वो एक कहानी जो है अच्छी बन सकेगी। इसके बाद है शीर्षक। अब सवाल उठता है कि इस कहानी का शीर्षक क्या लिखा जाए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लेखक कहानी लिख लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं इसका शीर्षक क्या रखा जाए। पहले एक शीर्षक नाम दे दिया, फिर उसके बाद कुछ हफ्ते बाद दूसरा नाम दे दिया, फिर जब कहानी छप गई नहीं ये ठीक नहीं था, फिर उसके बाद तीसरा कोई शीर्षक और दे दिया, तो हम हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि शीर्षक कौन सा दे। तो शीर्षक बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए मैं ये सुझाव दूंगा कि कथा लेखक को उसी अनुराग के साथ शीर्षक के लिए अवधारणाएं उत्पन्न करने में सक्षम होना चाहिए जिसके साथ उसने कथानक की अवधारणा का मानचित्र किया हो। इसके लिए अब सवाल यह है कि कैसे करेंगे, कैसे होगा। तो इसके लिए आप अपनी कहानी को लिखने के बाद अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं, उनसे उनकी सलाह ले सकते हैं कि इसका क्या टाइटल होना चाहिए, वो आपको सुझाव देंगे। तो कई बार टाइटल जो होता है वो सिंबॉलिक होता है, सांकेतिक होता है, कई बार किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे होता है, प्रोटैगनिस्ट के नाम पे होता है, कई बार किसी कंसेप्ट को लेके होता है, कई बार किसी एक जो शब्द विशेष आ जाता है जिसके बारे में बार बार उसका जिक्र करते हैं तो उस पर हो जाता है। तो शीर्षक जो है, कई ये लेखक अपनी सोच होती है कि वो किस शीर्षक के बारे में कैसे और क्या कहना चाहता है। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट है कहानी की लंबाई, कहानी की दीर्घता। कहानी में एक शब्द सीमा होती है, कहानी उतनी ही होनी चाहिए जितनी कहानी होती है। कहने का भाव यह है, कहानी ना तो बहुत लंबी हो ना ही बहुत छोटी हो। कहानी को घसीटना, जिसमें घसीटना नहीं होना चाहिए। कहानी में जबरदस्ती जो है उसके शब्द से बढ़ाने के लिए या उसका पेज बढ़ाने के लिए ऐसी कहानी नहीं लिखनी चाहिए, बल्कि कहानी उतनी लिखनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए जितनी उसकी, जितनी कहानी की मांग है। कहानी कहानी कोई उपन्यास नहीं होता, उपन्यास अलग होता है, कहानी अलग होती है। कहानी में एक घटनाक्रम होता है, लेकिन उपन्यास में क्या होता है, कई प्लॉट होते हैं, सब प्लॉट होते हैं, सब प्लॉट होते हैं, कई कहानियां होती हैं, तो कहानियों का मिक्स जो है अंत में आके वो इकट्ठी कहानी हो जाती है बात सब। तो कहानी और उपन्यास में अंतर होता है। उपन्यास चाहे आप कितना भी दीर्घ कर लें, लंबा कर लें, हो जाता है, लेकिन कहानी जो है उसमें एक सब प्लॉट होता है, और सब प्लॉट के लिए कितनी जमीन चाहिए उसको, उतनी जमीन प्रदान करना ही कहानीकार का उद्देश्य होता है। कहानी लंबी नहीं होनी चाहिए, कहानी उतनी होनी चाहिए जितनी कहानी की मांग है, जितनी कहानी की डिमांड है, कहानी उतनी ही होनी चाहिए। एक अंतिम बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है, वो मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है, एक जैसे दोहा सुना होगा आपने, करत करत अभ्यास के गणमति हो सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। कहने का भाव यह है कि जितनी मेहनत आप करेंगे कहानी के ऊपर, उतनी कहानी अच्छी बनेगी। परिश्रम हमेशा करते रहना चाहिए। एक बार कहानी एक बार लिखने से नहीं आ जाती, दो बार लिखने से नहीं आ जाती, एक कहानी को कई कई बार लिखना पड़ता है, तभी जाकर कहानी की भाषा, कहानी का भाव, कहानी की जो है समझ हमें आती है, कहानी में परिपक्वता आ जाती है। परिपक्व कहानी तब बनती है जब हम बार 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 इसका अभ्यास करते हैं, और अभ्यास लिखने से होता है, कहानियां पढ़ने से होता है। बहुत कहानियां पढ़िए, अधिक से अधिक साहित्य पढ़िए, सब भाषाओं का साहित्य पढ़िए, अंग्रेजी का पढ़िए, पंजाबी पढ़िए, हिंदी पढ़िए, बंगला पढ़िए, अगर भाषा आपको नहीं आती तो उसके अनुवाद पढ़िए। तभी जो है जितनी भाषा आप पढ़ेंगे उतना, जितनी भाषाओं में साहित्य आप पढ़ेंगे उतने ज़्यादा संस्कृतियों से आप वाकिफ होंगे, उतने ज़्यादा समाज से आप वाकिफ होंगे, उतने तरह के लोगों से आप वाकिफ होंगे, और आपका दृष्टिकोण जो है बड़ा विस्तृत होगा और आप एक अच्छे कहानीकार बन सकेंगे। तो प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, धन्यवाद।